21 जून दिन रविवार, दिन भर के साथ मैं रेहान फजल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हजारों लोगों के साथ मोदी ने किया योग।
आज कभी किसी ने सोचा होगा कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है।
देखेंगे अमेरिका में भी योग की हलचल और आपकी मुलाकात कराएंगे अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से।
अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी पर किसी तरह का कोई भी किसी भी रूप में कोई हमला नहीं हो सकता और हमारी सरकार के बारे में
जिक्र होगा भारत बांग्लादेश मैच का भी। लेकिन पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजपथ पर हजारों लोगों ने योग किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा योग गुरु बाबा रामदेव, योग मंत्री श्रीपद यशो नाइक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। ग्रीस की राष्ट्रीय बैंक की अध्यक्ष लूका केटसेली का कहना है कि यदि यूरोजोन के नेता ग्रीस के कर्ज संकट पर सोमवार को होने वाली वार्ता में समझौते पर नहीं पहुंचे तो यह उनका पागलपन होगा। उन्होंने बीबीसी से कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि ग्रीस को यूरोजोन छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा, क्योंकि यूरोजोन के लिए इसकी कीमत बेहद कड़ी होगी। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय आयोग के नेताओं से बात कर अपने देश के प्रस्ताव बताए हैं। ग्रीस इन प्रस्तावों को कर्ज संकट का ठोस हल बता रहा है। कर्ज संकट को लेकर ग्रीस के लोगों में बेचैनी है। एक पेंशन भोगी ने बताया, कल क्या होगा इसे लेकर हम में बेचैनी है। कोई नहीं जानता कि हमें कर्ज देने वाले क्या फैसला लेंगे और हमारे प्रधानमंत्री सिप्रास क्या रियायतें देंगे। बहुत अनिश्चितता का माहौल है और कोई नहीं जानता कि ये संकट कैसे खत्म होने वाला है। अमेरिका के चार्ल्सटन में हमले का शिकार हुए अफ्रीकी अमेरिकी चर्च से एकजुटता दिखाने के लिए आज देश भर में प्रार्थना सभाएं आयोजित होंगी। बुधवार को द इमैनुअल मेथोडिस्ट चर्च पर हुए हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। आज से ये चर्च फिर से खुल जाएगा। दक्षिण कैरोलिना में दर्जनों चर्चों की घंटियां एक साथ बजेंगी और लोग एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए मानव श्रृंखलाएं भी बनाएंगे। सीरिया के प्राचीन शहर पलमायरा से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने ऐतिहासिक स्थलों में विस्फोटक लगा दिए हैं। पलमायरा मध्य पूर्व के सबसे अहम प्राचीन स्थलों में से एक है। सीरिया में मानवाधिकारों की निगरानी करने वाले संगठन सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जिहादियों ने बम ऐतिहासिक स्थलों को उड़ाने के लिए लगाए हैं या सरकारी सैन्य बलों को रोकने के लिए। इस्लामिक स्टेट ने मई में पलमायरा पर कब्जा कर लिया था। यहाँ दसियों हजार लोग रहते हैं। अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि तालिबान ने कुंदूज प्रांत के अहम उत्तरी जिले चारदारा पर कब्जा कर लिया है। बीबीसी संवाददाताओं का कहना है कि प्रांतीय राजधानी और ये एयरपोर्ट से चंद किलोमीटर दूर होने के कारण ये रणनीतिक रूप से अहम शहर है। काबुल जाने वाली मुख्य सड़क भी इसी शहर से गुजरती है। तालिबान की एक वेबसाइट पर लड़ाकों को एक कब्जाई गई सुरक्षा चौकी के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाया गया है। सरकारी सुरक्षा बलों ने चारदारा को तालिबान के कब्जे से छुड़ाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है और बर्लिन की उस अदालत के बाहर दर्जनों प्रदर्शनकारी जमा हो गए हैं जहां अल जजीरा के पत्रकार को हिरासत में रखा गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। राजपथ पर योग कार्यक्रम के बाद विज्ञान भवन में संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग जीवन को जी भर के जीने की जड़ी बूटी है। योग ने करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य को ठीक किया है। इसे कमोडिटी नहीं बनाया जाना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजपथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 40,000 लोगों के साथ योगाभ्यास किया। नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और हमारी कवायद रात 3:30 बजे से ही शुरू हो चुकी थी। किसी तरह 5 सुरक्षा चेक पोस्ट पार करके दिल्ली के राजपथ पहुंचे तो सिर्फ लोगों का सैलाब दिखा। पूरे राजपथ पर रंग बिरंगी योग करने वाली मैट या चटाइयां और हर उम्र के लोग इंतजार कर रहे थे कार्यक्रम शुरू होने का।
आज कभी किसी ने सोचा होगा कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समय पर पहुंचे और उत्साहित लोगों को देखकर खुश दिखे। हालांकि अधिकारियों ने कल तक यही कहा था कि खुद प्रधानमंत्री योग क्रिया में शामिल नहीं होंगे, लेकिन भाषण खत्म होते ही मोदी मंच से उतरे और राजपथ पर एक चटाई लेकर योग प्रारंभ कर दिया। लोगों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। योग करके अपना सामान समेट रहे सरकारी कर्मचारी रंजन खरे को सुनिए।
गाजीपुर से आए हैं और निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक सम्मेलन में भागीदार बनना चाहते थे और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ये प्रयास विश्व में भारत को अपनी प्रतिष्ठा दिलाने में।
खुशी उनमें सबसे ज्यादा थी जिनसे खुद मोदी ने योग खत्म करने के बाद हाथ मिलाया और बातचीत की। पंजाबी बाग के सर्वोदय कन्या विद्यालय की लक्ष्मी उनमें से एक थी।
जब मैंने नरेंद्र मोदी जी के हाथ मिलाए तो उन्होंने कहा खुश रहो और आपको कैसा लग रहा है योगा करके, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने आज पहली बार इंटरनेशनल योग डे में हिस्सा लिया है तो इसमें मेरे को बहुत खुशी हो रही है।
आपको उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी स्टेज से उतर कर खुद आएंगे आपके पास और आप सब?
उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन असल में ऐसा हो गया तो अफसोस नहीं था कि वो आएंगे, लेकिन हमने उनसे हाथ मिलाया तो बहुत खुशी हो रही है।
वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के इस कदम पर खासा विवाद भी रहा है और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस पूरी प्रक्रिया को गैर इस्लामिक बताते हुए इस पर नाराजगी भी जताई है। इसलिए मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई है देखकर कि मंच से थोड़ी ही दूरी पर मुस्लिम समुदाय के खासे लोग योग करने की तैयारी में थे। इनमें से एक मिर्जा अली बेग से हमारी बात हुई।
तकरीबन 5 किलोमीटर दूर से आया हूं और मुझे 1 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ा है। हम लोगों के रोजे शुरू हो चुके हैं और मैं रमजान से भी हूं, तो मेरे को यहां पर जो चीज़ लेकर आई है वो भाई नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरनेशनल लेवल पर जो योग दिवस मनाने का ये प्रोग्राम रहा है वो मुझे यहां लेकर आई है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, तमाम लोगों ने ऐसा कहा है कि ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म या मजहब की तरफ जाता है।
नहीं देखिए, ऐसा है, जिन लोगों को ये आरोप है वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर मैं मुस्लिम्स की बात करूं तो 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने भी ये नमाज का जो हमारी प्रतिक्रिया दी गई थी, हम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, इट मीन्स हम 5 बार योगा करते हैं।
बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर तड़के सुबह ही राजपथ पर सरकारी कर्मचारी, नेतागण और विदेशी दूतावास के लोगों का तांता लगा हुआ था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और चुनाव में उनके खिलाफ लड़ी किरण बेदी भी अलग अलग जगहों पर योगा में तल्लीन थी। स्कूली बच्चों की कतारें खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही थीं और नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में योग की बढ़ती लोकप्रियता पर जोर दिया।
योग एक ऐसी विद्या है और जिसमें विश्व के अनेक भूभागों के अनेक रंग वाले लोगों ने, अनेक परंपरा वाले लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है।
भारत के अनेकों राज्यों में हजारों ने पहला योग दिवस मनाया है। जाहिर है इसमें सरकार ने करोड़ों खर्च किए हैं और शायद आगे भी करेगी, लेकिन ये कह पाना अभी जल्दबाजी ही होगी कि इस महान बताए जा रहे दिवस का असर कितने दिन तक रहेगा। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
उधर अमेरिका में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने न्यूयॉर्क पहुंची हुई हैं। दिल्ली की तरह न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भी बड़ी संख्या में लोग योग करने जमा हुए हैं। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी ने की रिपोर्ट भेजी है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज अमरीका भर में कई शहरों में योग के कार्यक्रम जारी हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के साथ साथ न्यूयॉर्क, शिकागो, ह्यूस्टन, लॉस एंजलिस आदि में योग के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वाशिंगटन में नेशनल मॉल के इलाके में भारी संख्या में लोग योग करने पहुंच रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासचिव बान की मून के अलावा महासभा के अध्यक्ष सैम कुटेसा और विभिन्न देशों के राजनयिक भी योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। 2 घंटे चलने वाले इस कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर योग करा रहे हैं और भारत से इस कार्यक्रम में शामिल होने खासकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी आई हुई हैं। साथ ही साथ न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर भारी संख्या में लोग योग करने पहुंच रहे हैं। टाइम्स स्क्वायर में सोल्स्टिस के दिन, यानी जब सूरज सबसे अधिक समय तक धरती पर प्रकाश डालता है, ये 13वीं बार योग का आयोजन किया गया है, जिसमें आयोजकों के मुताबिक करीब 30,000 लोगों के योग करने की उम्मीद की जा रही है।
So on this day when there is so much light and so much sun and so much energy.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज टाइम्स स्क्वायर में भी योग कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसके अलावा फ्लशिंग के इलाके में अमेरिका के सबसे पुराने मंदिर के प्रांगण में भी योग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। योगा दिवस के मौके पर मंदिर में योग कार्यक्रम के एक आयोजक बताते हैं,
योगासना का डेमोंस्ट्रेशन करेंगे, लेक्चर होगा, कल्चरल प्रोग्राम होगा, सब कुछ होगा।
इसके अलावा शाम को न्यूयॉर्क के मशहूर लिंकन सेंटर में श्री श्री रविशंकर द्वारा एक योग कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें योग पर गोष्ठी के साथ साथ प्रदर्शन भी किया जाएगा। अमरीका में एक ताज़ा सर्वेक्षण के अनुसार 2 करोड़ से ज्यादा अमरीकी योग करते हैं और अमरीका में करीब $10 अरब का व्यापार भी योग से ही जुड़ा है। अमरीका भर में शहरों में जगह जगह योग केंद्र खोले गए हैं और अधिकतर लोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योग का सहारा लेते हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
ये BBC है, आप दिन भर कार्यक्रम सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। भारत का संविधान हर धर्म के लोगों को अपने तरीके से रहने, पूजा पाठ करने की आज़ादी देता है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि पिछले समय में इस धार्मिक सद्भाव के ताने बाने में तनाव आने लगा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माहौल बिगड़ा है। इन्हीं शंकाओं को जब हमारी संवाददाता दिव्या आर्या ने अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को इक्का दुक्का सांप्रदायिक हमलों पर आंकना सही नहीं है, पर उन्होंने माना कि सरकार से परे कुछ सिरफिरे लोग हैं जो हमेशा रहेंगे। सुने एक विस्तृत बातचीत।
BBC हिंदी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी साहब। मोदी सरकार को 1 साल हुआ है और इस 1 साल में चर्चों पर हमलों से लेकर कई ऐसी हमले हुए हैं जिससे हमने जिन लोगों से बात की, जिन अल्पसंख्यकों से बात की, धार्मिक अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम ईसाई, उनके मन में एक डर है।
देखिए, मुझे लगता है कि जो डर की बात है वो बिल्कुल गलत है। अल्पसंख्यक यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनकी धार्मिक आज़ादी पूरी तरह से सुरक्षित है और हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनके धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक तरक्की के लिए बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। कुछ अगर इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं तो निश्चित तौर से उनसे हम भी विचलित हुए हैं। हमने उसको बहुत स्ट्रांग तरीके से, बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से, बहुत मजबूती के साथ उसको कंडम भी किया है और जो इस तरह की घटनाओं में जो लोग शामिल हैं उनके लिए हमने, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की बात भी की है और जो राज्य सरकारें जहाँ जहाँ पर ये घटनाएं हुई हैं उन राज्य सरकारों को भी हमने कहा है कि बिना किसी नरमी के ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो इन पिछले 1 वर्षों में देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी किसी भी तरह का सांप्रदायिक उन्माद या सांप्रदायिक दंगे की बड़ी घटना नहीं हुई। 1 सालों में किसी भी अल्पसंख्यक को केवल इसलिए कि वो अल्पसंख्यक है और उसको गलत तरीके से किसी आतंकवादी, किसी राजद्रोही गतिविधियों में गिरफ्तार कर लिया जाए, नहीं हुआ है। जबकि पिछले 10 सालों में अगर आप देखें तो हर दिन कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीज़ें आपको सुनाई पड़ती रहीं।
लेकिन जिन मुस्लिमों से हम मिले दिल्ली से बाहर जाकर, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जहाँ आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से ऐसे भड़काऊ स्टेटमेंट्स आते रहे हैं और मैं कुछ पढ़ के भी बता सकती हूँ कि जो मोदी जी के विरोधी हैं वो पाकिस्तान जाएं, गिरिराज सिंह जी ने ये बात कही थी। साक्षी महाराज ने कहा था मदरसों में जो लड़के पढ़ते हैं वो आतंकवादी बनने के लिए वहाँ पढ़ाई करते हैं। साध्वी निरंजन ज्योति ने रामजादा और हरामजादा की बात कही थी जो हमें शायद दोहरानी भी नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जहाँ अल्पसंख्यकों की तादाद ज़्यादा है उन इलाकों में दंगे होते हैं। ये जिम्मेदार मंत्री हैं सरकार में, तो ऐसे लगता है कि ये सरकार की आवाज़ है?
नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज मीडिया का युग है और इस मीडिया के युग में बात का बतंगड़ बनना बहुत आसान काम है। जो किसी ने कहा मैं उस पर उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि आपने एक पोर्शन पकड़ा और उसके बाद जैसे
आपकी तो, बात मैं काट नहीं रही नहीं, पर नहीं, कई नहीं, कई नहीं, कई बार तो बिल्कुल सही तो, स्टेटमेंट भी सामने आती है।
हाँ, सही भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इसलिए इस तरह के इक्का दुक्का केसेस के आधार पर आप सरकार की इमेज को, सरकार के परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, पहले भी बहुत जो सरकारें दूसरी थी, जो सेकुलरिज्म के सियासी सुरमा अपने को कहते हैं, उनके समय भी इस तरह की बातें आती थी। इसलिए इस तरह की जब जब बात आई हमने उसको कंडम किया है, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की बात की है और हमने उससे अपने को डिसएसोसिएट भी किया है और हम उससे बिल्कुल मानते हैं कि ये ठीक नहीं है।
नहीं, क्योंकि नकवी जी क्या है कि पहले तो मंत्रियों की तरफ से ऐसे बयान आते हैं, फिर साथ में अगर आरएसएस के प्रमुख की तरफ से बयान आते हैं, ये कहा जाता है कि हर भारतीय हिंदू है और यहाँ पर अल्पसंख्यकों को अपना स्थान देखना होगा और बनाना होगा, जब इस तरह के आते हैं तो ऐसा लगता है कि मंत्री भी ये कह रहे हैं, जो हिंदू नेता हैं वो भी ये कह रहे हैं, तो ऐसे में अल्पसंख्यक कहाँ जाता
है कि इस तरह की बातों का बात का बतंगड़ बनाना उचित नहीं है। अगर आप देखें तो ये देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें अलग अलग मज़हब के रहने वाले लोग, अलग अलग मज़हब को मानने वाले लोग रहते हैं, अपने धार्मिक आज़ादी के प्रति सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग आश्वस्त हैं, सभी लोगों को इस देश में उनकी धार्मिक आज़ादी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे और भी समाज के लोग हों, और वो स्वतंत्रता से अपनी धार्मिक आज़ादी के साथ वो कहाँ रह रहे हैं। जहाँ तक सवाल है, कुछ आपने कहा कि कुछ इस तरह के बयान, हम मानते हैं कि बात का बतंगड़ बहुत बनता है,
पर नकवी जी हम मैं कह रही हूँ मीडिया के तौर पर, मीडिया भी ऐसे स्टेटमेंट्स को तभी ज़्यादा तरजीह देने की मंशा नहीं होती है, नहीं ज़्यादा तरजीह देने की मंशा नहीं होती है, पर अगर हम जा रहे हैं गाँव में और लोगों को भी ये बातें उतनी ही चुभ रही हैं जितना हमें लगता है, तो क्या ऐसा है कि आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि लोगों को ये दरअसल ये बातें चुभ रही हैं, उनके लिए ये एक्सेप्शन नहीं है?
हमें एहसास है, मीडिया क्या करता है, मीडिया तो परोसेगा ना, जो परोसेगा, जो चीज़ आप जो है वो लोगों को दिखाएंगे, जो लोग सुनाएंगे वही लोगों के समझ में आएगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमने कभी भी इसको जस्टिफाई नहीं किया, हम ना अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन वजहों से हमारा जो कोई विकास का जो एजेंडा है, हमारा जो सुशासन का एजेंडा है, वो कभी कोई ये चीज़ें उस पर डोमिनेट नहीं हो पाएंगी और ना डोमिनेट हो सकती हैं, कि ये धार्मिक एजेंडा नहीं है, ये राष्ट्रीय एजेंडा है, और इसकी वजह से आज देश जो है, देश की दुनिया में छवि अच्छी हुई है। इस तरह की घटनाओं का जो है वो अगर प्रचार होता है तो निश्चित तौर से उसे हमें दुख होता है और हम उसको इसीलिए कंडम करते हैं और अपने को अलग भी करते हैं।
अगर मीडिया भी ये दुष्प्रचार कर रहा है जैसा आप कह रहे हैं, या इन बातों को ज़्यादा तरजीह मिल रही है, क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए जिससे अल्पसंख्यकों में ये डर या ये जो नाराज़गी है ये कम हो?
देखिए, मैं तो अल्पसंख्यक इलाकों में तमाम पूरे देश में घूम रहा हूँ। मैं अभी केरला गया था, महाराष्ट्र में गया था, आंध्रा गया था, तेलंगाना गया था, कर्नाटक में गया, तमिलनाडु गया, मध्य प्रदेश गया, गुजरात गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी जगहों पे, वेस्ट बंगाल, और सभी जगहों पे हम अल्पसंख्यकों के साथ बैठे, उनके साथ मिले, आम लोगों के साथ मिले, उनके इलाकों में गए, और हमने उनसे यही जानना चाहा कि उनकी मुख्य समस्याएँ जो हैं वो क्या है और किस तरह से उसको एड्रेस करना चाहिए। निश्चित तौर से सबने कहा कि एक शिक्षा बड़ी समस्या है, उन्होंने कहा कि हमारी तरक्की बहुत बड़ी समस्या है, रोज़गार बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कि हम पूरी तरह से अछूते हो रहे हैं, और जब ये बातें आई तो हम उसके तरफ बहुत तेज़ी के साथ, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं।
क्या अगर कोई अल्पसंख्यक हमें ये कहता है कि उन्हें लगता है कि जो लोकल स्तर पर हिंदू ताकतें हैं उनको एक शह मिली है क्योंकि हिंदू पार्टी है जो इस वक्त देश में सत्ता में है, तो इसलिए उन्हें डर लगता है, उन्हें लगता है उन्हीं हिंदू ताकतों से पुलिस चलती है, उन्हीं से आसपास का माहौल बनता है, मीडिया तक लोकल मीडिया चलता है, तो ये जो नेटवर्क है, ये जो उनको लगता है कि सारा एक साथ उनके खिलाफ खड़ा हो गया है क्योंकि टॉप पे एक सुरक्षा मिली हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं?
इतना बड़ा जनादेश मिला है तो हिंदुत्व पे तो नहीं मिला, डेवलपमेंट पे मिला है, सबके साथ सबके विकास के नारे पर मिला है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प पे मिला है, तो इसलिए जो है वो हमने जब हमें वोट दिया लोगों ने तो हमें जो है इसलिए नहीं दिया था कि हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हमें डेवलपमेंट के नाम पे दिया था और हमारा कमिटमेंट डेवलपमेंट है।
आप बात नहीं कर रहे पर अगर हिंदू और जो ग्रुप्स हैं, जो अन्य ग्रुप्स हैं, अगर वो कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि एक संदेश सरकार की तरफ से उन्हें जाना चाहिए?
इस तरह की सिरफिरी आवाज़ें, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे कुछ और लोग हों, उनकी में कुछ इस तरह के ग्रुप्स होते हैं, आप उसको जो है वो कोई भी युग आएगा वो ग्रुप रहेगा। मुस्लिम्स में बहुत से ऐसे ग्रुप हैं, कह रहे हैं साहब हमें हिंदुस्तान से हम अलग होंगे, हम यहाँ पे अलग से पाकिस्तान बनाएंगे, कोई कहता है कि साहब हम ये करेंगे। मुझे लगता है ये चीज़ें जो है, इस चीज़ों का असर किसी भी सरकार पर, किसी भी व्यवस्था पर नहीं पड़ता, और मोदी जी की सरकार पर तो बिल्कुल भी नहीं,
सरकार पे नहीं, पर अगर ये लोगों पे पड़ रहा है क्योंकि ये हम ऐसा सुन के आए हैं, तो क्या संदेश आप अल्पसंख्यकों को भी और जो मेजॉरिटी है उसको भी देना चाहते हैं?
संदेश बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है कि अल्पसंख्यकों की धार्मिक आज़ादी पर किसी तरह का कोई भी किसी भी रूप में कोई हमला नहीं हो सकता, और हमारी सरकार के बारे में वो अपना आकलन दूसरों के राजनीतिक चश्मे से ना करें, बल्कि हमें हमारे काम को देख करके हमारा आकलन करें।
और जो एक कुछ इंडिविजुअल केसेस आए, बंबई में एक महिला को घर में रहने को नहीं मिला क्योंकि मुसलमान है, एक व्यक्ति को ईमेल पे बाकायदा औपचारिक रूप से कंपनी ने कहा कि आपको नौकरी नहीं दी जाएगी क्योंकि आप मुसलमान हैं, बल्लभगढ़ में अभी दंगा हुआ, लोगों के घर जलाए गए मुसलमानों के क्योंकि वो वहाँ मस्जिद बना रहे थे जबकि कोर्ट ऑर्डर है उसके बावजूद।
देखिए, हमें इस बात की खुशी है कि दुनिया में बहुत आतंकवादी घटना हुई, कई ISIS अलकायदा जैसे संगठनों का जन्म हुआ, लेकिन भारत का मुसलमान न तो उन ताकतों के चंगुल में फंसने पाया बल्कि उसको रिजेक्ट किया, उसके ख़िलाफ़ उसने आवाज़ उठाई और उसको ऐसी ताकतें भारत में न तो जड़ जमा पाई। लेकिन दुनिया में जो एक माहौल बना है इस तरह की ताकतों के ख़िलाफ़, जो आतंकवादी हैं, जिहादी सो कॉल्ड कही जाती हैं, उनका असर जो है वो दुनिया में तमाम जगह पर दिखाई पड़ता है। हमारे देश में मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत कम पैमाने पर इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। जो दिख रही है वो भी नहीं होनी चाहिए। हमारा देश बहुत सहिष्णु देश है। हमारे देश में जो है वो जो सौहार्द है वो इस देश की जो है खूबसूरती है। हमारे सौहार्द को कोई बिगाड़ ना सका है ना बिगाड़ पाएगा। इस तरह की जो छोटी मोटी घटनाएं एक दो जगह पे अगर आ रही हैं तो वो हम दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए समाज तैयार होना पड़ेगा, समाज को तैयार होना। हमें जो है वो जो टेररिज्म है, जो सेपरेटिज्म है, उसकी फैक्ट्रियां बंद करके और विकास के रास्ते पे चलना पड़ेगा, तभी हमारा भला है। और आने वाले दिनों में हमारे रिश्ते, अगर उसने आतंकवाद का रास्ता छोड़ा, आतंकवादियों को प्रश्रय छोड़ा, तो हमारे रिश्ते पाकिस्तान से भी बहुत अच्छे होंगे।
आपने पाकिस्तान की बात की, अक्सर स्टेटमेंट्स आई हैं मुसलमानों को पाकिस्तान जाने को कहा जाता है, और आखिरी स्टेटमेंट तो आप ही की तरफ से आई कि गौ मांस खाने वाले पाकिस्तान और अरब देशों में जाएं।
देखिए, पहली बात यह कि बिल्कुल मैं आपके उस कार्यक्रम में एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि मैं जब ये एक कार्यक्रम था एक टेलीविज़न चैनल का, उसमें एक एंकर थे, उन्होंने मुझे पूछा कि साहब आपने महाराष्ट्र में बैन क्यों कर दिया गोमांस पे। तो मैंने कहा भाई देखो, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स के लोगों की भावनाएँ, उसके आधार पर राज्य सरकारें तय करती हैं। हमारा देश जो है वो संघीय ढांचे के तहत चलता है। तो उनका कि आप बैन कैसे कर सकते हैं। फिर एक और उस पर एंकर थे, सज्जन थे जो हमारे साथ पैनल पे थे, उन्होंने कहा कि साहब हम तो खाएंगे तो हम तो नहीं उसके बिना रह सकते। हमने कहा देखो, जहाँ बैन है वहाँ कानून तोड़ के तो आप नहीं खा सकते। जिन स्टेट्स में बैन नहीं, आप वहाँ जाइए। अगर आप उसके बिना ज़िंदा नहीं रह पा रहे हैं तो उन स्टेट्स में चले जाइए, उन देशों में चले जाइए जहाँ अवेलेबल है। तो पहली बात ये बता दें कि हमारा देश जो है वो बहुत बहुत खुले दिमाग का और खुले दिल वाला देश है। और गाय के प्रति देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी की भावनाएं जुड़ी हुई। जैसे कि मैं मुसलमान हूँ, अब मेरे मोहल्ले में कोई आकर के कहे कि मैं सुअर काटूंगा और तुम्हें खिलाऊंगा, तो मैं उसको तो नहीं बोलूँगा मेरे मोहल्ले वाले सब उसको मारने लगेंगे। उसी तरह से आप हिंदू जो हो, जिनकी अपनी भावनाएँ हैं गाय से, उसे गौ माता कहते हैं, उसकी पूजा होती है, आप उसको कहेंगे नहीं जब तुम्हारे मोहल्ले में ही, तुम्हारे इलाके में ही, तुम्हारे सामने आके सामने काटेंगे, ये हमारी जिद है। तो मुझे लगता है इस तरह का रिजिड एटीट्यूड कतई ठीक नहीं होता, ना हमारी तरफ से होना चाहिए ना किसी और की तरफ से।
देश भर में गौ मांस पर रोक लगाने की, बीफ बैन जो है अभी, क्योंकि जो स्टेट्स में है, एक मांग ये भी उठ रही है कि पूरे देश में लगाया जाए, उस पर सरकार की क्या सोच
है? हर स्टेट में अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग अलग प्रदेश के लोगों की अपनी अपनी मांग है, अपनी भावनाएँ हैं, और उसको देख करके स्टेट की गवर्नमेंट्स डिसाइड करती हैं। जिन स्टेट्स में इस तरह की भावना नहीं है वहाँ पर वहाँ अलाउ है। जहाँ पर भावनाएं हैं, जहाँ पर लोगों की मांग है, जहाँ पर लोगों को लगता है कि नहीं होना चाहिए, वहाँ पे इसको, मतलब इसके कई साइंटिफिक कारण भी हैं, कई और भी कारण हो सकते हैं, न केवल भारत में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में गाय के बारे में, गाय की रक्षा के बारे में बहुत सी बातें होती रही हैं, उसके कई वैज्ञानिक कारणों के साथ होती रही है।
मतलब राष्ट्रीय बैन पर क्या कोई विचार हो रहा है सरकार?
नहीं, हमने कहा ना ये स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट इसको तय करेगी।
बहुत शुक्रिया।
अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बात कर रही थीं दिव्या आर्य। और इस समय मीरपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 200 रन बनाए हैं। बीच में बारिश ने काफी व्यवधान डाला। आदेश कुमार गुप्त इस मैच पर नजर रखे हुए हैं। बताइए क्या है ताज़ा स्थिति?
जी देखिए, ताज़ा स्थिति यह है कि जब एक बार खेल रुका तब ऐसा लगा कि शायद मैच नहीं हो सकेगा। जब खेल रुका तब भारत का स्कोर 43.5 ओवर में 8 विकेट खोकर 196 रन था। और उसके बाद जब दोबारा खेल शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि शायद भारतीय बल्लेबाज कुछ करेंगे, क्योंकि अंपायर्स ने इस मैच को फिर 47-47 ओवर का कर दिया। लेकिन आप देखिए कि बांग्लादेशी गेंदबाजों ने बहुत ही ज़बरदस्त वापसी की और भारत के बचे हुए 2 विकेट को बहुत ही सस्ते में निपटाया और केवल 4 रनों के भीतर ही भारत का पुलिंदा, जैसा कि आपने बताया, 200 रनों पर बांध दिया। वैसे आज भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और अपनी टीम में 3 परिवर्तन किए। हैरानी की बात है कि अजिंक्य रहाणे, जो कि पहले टेस्ट मैच में 98 रन बनाने में कामयाब रहे थे और उनका प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा है पिछले दिनों, उन्हें आज टीम से ड्रॉप किया गया। उमेश यादव और मोहित शर्मा को भी टीम से बाहर किया गया, उनकी जगह अंबाती रायडू, धवल कुलकर्णी और अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया। आज भारत की शुरुआत कतई शानदार नहीं रही। मुस्तफिजुर रहमान, जिनका जोश सातवें आसमान पर था, आज उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि इस युवा गेंदबाज ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, दरअसल दोनों टीमों के बीच वही अंतर साबित हुए हैं। आज उन्होंने 43 रन देकर 6 विकेट हासिल किए। रुबेल हुसैन ने भी 26 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और नासिर हुसैन ने भी 2 विकेट लिए। आज जब शुरुआत हुई तो रोहित शर्मा का खाता भी नहीं खुला था, केवल दूसरी गेंद पर वो शब्बीर रहमान को कैच दे बैठे और मुस्तफिजुर रहमान को ये विकेट मिला। उसके बाद शिखर धवन और विराट कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए 74 रनों की साझेदारी हुई और आप देखिए कि जब विराट कोहली आउट हुए तब 12.3 ओवर थे, यानी तब तक स्थिति इतनी ख़राब नहीं थी। विराट कोहली ने 23 रन बनाए। बीच में उन्होंने रनों की रफ्तार को तेज़ करने की कोशिश भी की, उन्होंने दिलेरी दिखाते हुए एक छक्का भी लगाया जो कि इस पूरे मैच में अभी तक का एकमात्र छक्का रहा। शिखर धवन ने 53 रन की पारी खेली और उसके बाद जब कप्तान धोनी मैदान में उतरे तो देखिए कितना दबाव उनके ऊपर था। 75 गेंदों का सामना किया उन्होंने 47 रन बनाने के लिए और इस दौरान केवल 3 चौके उनके बल्ले से निकले। अंबाती रायडू, वो अपना खाता नहीं खोल सके। सुरेश रैना ने 55 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 34 रन का टीम को कुछ सहारा दिया। रविंद्र जडेजा 19 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान का शिकार बने। अक्षर पटेल अपना खाता नहीं खोल सके। तो कुल मिलाकर यह कहना होगा कि बांग्लादेश आज एक ऐसा परिणाम देने जा रहा है जो उसके लिए बहुत ही ऐतिहासिक होगा और आज ऐसा लगता है कि बांग्लादेशियों के लिए तो आज ही दिवाली और ईद बन सकती है अगर वो 201 रनों का तो लक्ष्य हासिल कर लेते हैं।
शायद बारिश बचा पाए भारत को, जिसकी की संभावना नहीं दिखती, खासी बारिश हो चुकी है। बहरहाल नज़र रहेगी, इस पर आप नज़र बनाए रखें। ये बताइए, दूसरा मैच जो कि टेस्ट था पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच,
वहां पर बहुत ही हैरत अंगेज परिणाम रहा रियान साहब, और पाकिस्तान ने श्रीलंका को आश्चर्यजनक रूप से 10 विकेट से मात दे दी। हालांकि आज मैच का आखिरी दिन था और ऐसा लगता है कि श्रीलंका किसी तरह से इस मैच को बचा लेगा, लेकिन जो पाकिस्तानी गेंदबाज हैं उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और यासिर शाह ने तो आज 7 विकेट अपने नाम किए कुल मिलाकर और 76 रन उसके लिए उन्होंने खर्च किए और श्रीलंका की जो दूसरी पारी है वो 206 रनों पर ही समाप्त हो गई। पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 90 रनों का लक्ष्य था। मोहम्मद हफीज ने नाबाद रहते हुए 46 रन बनाए, अहमद शहजाद ने नाबाद रहते हुए 43 रन बनाए और इस तरह से जो जीत के लिए 92 रनों का लक्ष्य था बिना किसी 91 रनों का लक्ष्य था बिना किसी नुकसान के हासिल किया। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह का निराशाजनक प्रदर्शन रहा था उसके बाद उनके खेल पर उंगलियाँ उठ रही थी। और अगर चलते चलते टेनिस की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने गैरी वेबर ओपन का फाइनल जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने इटली के आंद्रिया सेपी को 7-6, 6-4 से हराया। फेडरर ने 8वीं बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है।
बहुत बहुत धन्यवाद आदेश कुमार गुप्त। और अब चलते चलते एक नज़र मुख्य समाचारों पर।
पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजपथ पर हजारों लोगों ने योग किया। ग्रीस की राष्ट्रीय बैंक की अध्यक्ष लुका केटसेली का कहना है कि यदि यूरोजोन के नेता ग्रीस के कर्ज संकट पर सोमवार को होने वाली वार्ता में समझौते पर नहीं पहुंचे तो यह उनका पागलपन होगा। सीरिया के प्राचीन शहर पलमायरा से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने ऐतिहासिक स्थलों में विस्फोटक लगा दिए हैं। अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि तालिबान ने कुंदूज प्रांत के अहम उत्तरी जिले चारदारा पर कब्जा कर लिया है। बर्लिन की उस अदालत के बाहर दर्जनों प्रदर्शनकारी जमा हो गए हैं जहां अल जजीरा के पत्रकार को हिरासत में रखा गया है। बीबीसी समाचार।
आज के दिन भर में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी रात 9:30 बजे घटना चक्र कार्यक्रम में। आज स्टूडियो संभाला देवाशीष ने। सभी साथियों के साथ रेहान फदल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।